أعوذ ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بعيد الله ولعنة الله على أعدائهم عاد الله من يوم هذا لقاء الله. أما بعد، فقال الله في كتاب حكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ إبراهيم صدق الله العظيم. مؤمنين آل محرم اور تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری اور ساری ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ شعرا کی 69 آیت، جیسے میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جس سورہ میں کچھ انبیاء کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے اور بتایا کس طریق سے وہ قوم کے پاس گئے اور قوم نے ان کو جھٹلایا. تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کری تھی، اب ابراہیم علیہ السلام کی اللہ بات کر رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے اللہ، کس طرح ترجمہ چل رہا ہے؟ آپ ان کے سامنے ابراہیم کا قصہ بیان کیجئے. بتل علیہم نبأ ابراہیم، کیوں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کریں؟ کیونکہ یہ سرکار مکہ میں آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے دین کی تبلیغ مکہ میں کری تھی، اور اس وقت مکہ میں کری تھی جب وہاں پر ایک بھی مومن نہیں تھا، اکیلے تھے ابراہیم علیہ السلام. اور انہوں نے اور کفار جب سرکار آئے تھے اس وقت کفار ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، ان کی عزت بھی کرتے تھے، حالانکہ وہ لوگ رستے سے بھٹک گئے تھے، دین ابراہیم سے بھٹک چکے تھے، لیکن پھر ان کے دل میں ایک عزت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، حالانکہ انہوں نے وہ دین سے بھٹک چکے تھے. وہاں پر اولاد ابراہیم بھی رہتی تھی، اولاد ابراہیم مکہ میں، اس میں سرکار بھی تھے، لیکن اولاد ابراہیم میں کچھ مومن تھے کچھ کافر تھے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ نے فرمایا بتلو علیہ نبی ابراہیم، آپ ان کے سامنے ابراہیم کا قصہ بیان کیجئے. اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون، یاد کیجئے کہ ابراہیم نے اپنی باپ کے باپ مطلب وہ ان کے باپ اصلی باپ نہ تھے بلکہ ان کے باپ کے بھائی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باپ ہو کے پکارا ہے. یاد کیجیے جب ابراہیم اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ کس کی عبادت کرتے ہو، ماں باپ، مطلب کہ جب ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو ایک کیو میں تھے، گفا میں تھے، جب کیونکہ ان کو کچھ خوف تھا، ڈر تھا کہ کوئی ان کو قتل نہ کر دے. جب وہ گفا سے باہر آئے تو چھوٹے سے تھے، تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، دین مطلب کہ توحید ان کے دل میں شروع سے اللہ کی توحید تھی، تو جب باہر آ کے انہوں نے تماشا دیکھا کہ گفا کے باہر آئے کہ لوگ تو بت پرستی کر رہے ہیں، آزر جو تھا ان کا چچا وہ بھی بت پرستی کرتا تھا. تو جب وہ باہر آئے تو انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ماں تعبد، ماں اس کو کہتے ہیں جس جو کہ مطلب کہ کیا کس کی عبادت کر رہے ہو، مطلب اس طریقے سے بتا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ پہچانتے ہی نہیں بتوں کے بارے میں، کوئی کچھ بھی نہیں معلوم ہے. اس طرح سے ڈبیٹ میں چیلنج کرتا رہا انسان کہ تم کیا بات کر رہے ہو، مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم تم کیا کر رہے ہو. اس طرح انہوں نے چیلنج کرا، ماں تعبد، کس کی عبادت کر رہے ہو، کون ہے یہ عجیب سی چیز، کیا ہے، تم کس کو بول رہے ہو، تاکہ سامنے والے کے دماغ میں کچھ ایک فکر پیدا ہو. ما تعبدون، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين، انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کی پوچھتے اور ہم ہمیشہ انہی کے پوجا کرتے رہیں گے، ہم ان کو پوچھتے ہیں اور ہم کو ہمیشہ پوچھتے رہیں گے، ہمیشہ انہی کے پجاری رہیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے آ رہے ہیں اور ہم اس کو کرتے رہیں گے، ہم اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں. آج یا پہلے ہندوستان میں آپ لوگوں سے پوچھیں تم کسی پوجا کر رہے ہو، پی ایچ ڈی ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، آپ سے بولے بھائی تم کس کی پوجا کر رہے ہو، ہم تو بتوں کی پوجا کر رہے ہو، ہم کو تم چھوڑو مان. بس یہی صحیح ہے، کیا ہے، فکر نہیں کرنا چاہتے، دماغ پہ زور نہیں ڈالنا چاہتے، نہیں چاہتے کیونکہ گھر میں کوئی مشکلات آئیں، کچھ ہلچل پیدا ہو جائے، एक सुस्ती है और एक काहली है, इसलिए कोई फिक्र नहीं करा। जब चाहते कहते बस हम यही करने वाले हैं, हमको तुम डिस्टर्ब मत करो, हमारी लाइफ जो चल रही बेहतरीन चल रही। काला हल यसमऊन कुम इत्तदऊन, इब्राहिम ने सवाल किया क्या जब तुम उनको पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी आवाज सुनते हैं। इब्राहिम ने सवाल चैलेंज करा, कहा क्या तुम पूछते तो हो उनको, लेकिन जब तुम उनको बुलाते हो तो तुम्हारी बात सुनते भी हैं क्या? तुम जिससे राबता कर रहे हो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, वो क्या है? क्या तुम कुछ कुछ सुनते भी हैं कि नहीं? क्या समझते भी कि नहीं? क्या किसकी पूजा कर रहे हो? तो मिर्ज़ा ने थोड़ा तफसील से बयान करा कि किसकी पूजा किया करते थे लोग। तो पूजा ये या तो जिन्नात की करते थे, या फरिश्तों की करते थे, या फिर सितारों की पूजा करते थे, सोचते थे कि ये फरिश्ते जो हैं, या फिर किसी अंबिया की पूजा करते थे, उनके शक्लें बनाते थे। वो कहते थे कि हमने शक्लें बना ली हैं, अब उनको देख तो सकते नहीं, तो हम शक्ल बना लेते हैं। हालांकि हमारी मुराद उनसे ही अकी थी। फरिश्तों को हम देख तो सकते नहीं है, जिन्नात को हम देख तो सकते नहीं, तो हम उनकी शक्लें बना लेते हैं और फिर हम रब्ता उन्हीं जिन्नात से करेंगे, उन्हीं फरिश्तों से करेंगे, वही अंबिया उनसे करेंगे। हालांकि शक्लें उनकी होंगी लेकिन रब्ता हमारा उनसे रहेगा। या फिर सितारे थे, कौन से सितारे? जुपिटर है, वीनस है, अलग अलग सितारों की अलग अलग रूहानी खसूसियात थी। तो कहते थे कि ये जो सितारे हैं इनमें खास असरात हैं, और जो उसका असर होता था उसके हिसाब से उसकी एक बुद्ध बनाते थे कि कोई सितारा उसका औरत की शक्ल रहेगी, अलग अलग क्या कही इनकी रूहानी असरात ये हैं, उसी शक्ल का सितारा हम उसका बुद्ध बना लेंगे। और फिर धीरे धीरे पहले तो उनकी मुराद वो हुआ करते थे जिन्नात, या वो फरिश्ते हुआ करते थे, या वो सितारे होते थे। बाद में उनका फोकस सिर्फ बुतों पर हो गया था, सिर्फ बुतों पर हो गया था। तो वो बहुत से लोग अपडेट करते हैं कि भाई तुम भी तो जाते थे काबे के अंदर भी, तुम जाके तुम काबे की तरफ जाते हो, वहां पर हजरत असद है उसको चूमते, तो वो क्या है? तो दोनों में फर्क है। हम जो काबे की तरफ इबादत करते हैं तो हम काबे को सिर्फ इबादत की सिफत मानते हैं, हम सिर्फ मानते हैं, लेकिन हम उस हजरत असद को इबादत के लायक नहीं समझते हैं, ना हम उसकी पूजा करते हैं। हाँ, हम हमारा जो हजरत असद या काबा है सिर्फ हमको खुदा की तरफ सिर्फ दिखाता है, ताकि पूरे कौम यकसू होकर एक तरफ इबादत करे। हजरत असद का काबे का जाती तौर पर अल्लाह की जात में दखल नहीं है, अल्लाह की जात में दखल नहीं, ना हम उसकी इबादत करते, ना तो हम हजरत असद की इबादत करते, ना हम काबे की इबादत करते हैं। हम सिर्फ इबादत करते हैं तो सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला की। तो दोनों में फर्क है, ताकि वो सलूक कर कहते थे कि तुम भी तो कुछ करते हो, तो हम ऐसा कुछ नहीं करते। तो फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि तुम पुकार देते हो लेकिन क्या तुम्हारी बात सुनते भी हैं क्या? तुम किसकी बात करते हो, क्या सुनते हो तुम्हारी बात? पहले तो ये कहा क्या सुनते हो तुम्हारी बात, फिर क्या कहा आओ यनफाउनकुम आओ ये दुरून, या तुम्हें कोई फायदा या नुकसान पहुंचाते हैं, तुम क्यों मदद करते हो? क्या तुम्हें कुछ फायदा पहुंचा रहे हैं या कोई नुकसान कर रहा है? इनका कहना ये था, इनका ये जो पुजारी थे कि इनमें कुछ बुत तो ऐसे हैं जो हमको फायदा देंगे, या कुछ बुत ऐसे हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, दर्द ऐसे ही नो। तो इस तरह से उन्होंने बुतों का सिंबल बना लिए थे, लेकिन इब्राहिम अलैहि सलाम फिर कहा तुम्हारी बात ही नहीं सुनते तो फिर क्या फायदा देंगे या क्या नुकसान देंगे, जब सुन ही नहीं रहे तुम्हारी बात। जब इब्राहिम अलैहि सलाम ने इस तरह से दलील दी तो उनका जवाब क्या था सुनिए, अब उनको समझ में नहीं आएगा क्या करें। क्या कहा उन्होंने? कालू बल वजदना आबा आना वो कदाली का ये फलू। उन्होंने जवाब दिया कि हमने अपने आबा अजदाद को ऐसा ही करते हुए पाया। कहा गए अब हम तुम्हारी बात का जवाब तो नहीं दे सकते इब्राहिम अलैहि सलाम, लेकिन हमने हमारे बाप दादा को ऐसे ही करते आया है, हमने तो यही देखा। काला अफर आए तुम मां कुंतुम ताबदून, अब्राहिम ने कहा कभी तुमने गौर किया कि तुम जिन पुतों को पूछते हो, अंतुम वो आबाओ अकदमून, तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा, फ इन्नहुम अदुकुल्ली इल्ला रब आलमीन, ये सब के सब मेरे दुश्मन है सिवाय जहानों के परवरदिगार के। कहा कि जो जिसकी तुम पूछते हो, कहा कि क्या कहा अब्राहिम ने कहा तुम गौर किया कि तुम जिसको पूछते हो, तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा, ये सब के सब मेरे दुश्मन है, तुम भी दुश्मन हो तुम्हारा भाप मतलब दुश्मन है, रिपोर्ट भी मेरा दुश्मन है, सिवाय रब्बुल आलमीन के बाकी सब दुश्मन है मेरे। क्यों इब्राहिम अलैहि सलाम ऐसा क्यों मानो तुम सब दुश्मन हो गए तुम्हारे बुद्ध तुम तुम्हारे बाप दादा क्यों? बड़ी गौर की बात है मोमिनी, क्योंकि तुम तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बुद्ध सब मुझे सिरातल मुस्तकीम से दूर हटाते हैं, ये सारे का सारा मेरे दिमाग पे बुरा असर डालते हैं, बुरा असर डालते हैं ताकि मैं अपने रब्बुल आलमीन के रस्ते से हट जाऊं। इसलिए जरूरी है कुरान में बार बार कहा कि काफिरों को दोस्त मत बनाओ, हालांकि आप अच्छा सलूक कर सकते हो कि आपको आप तब्दील कर सकते हो, लेकिन उनसे अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उनकी उनकी बातों पे आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, अल्लाह ने सख्ती से मना करा है, कहा अगर तुमने दोस्त बनाया दिली दोस्त बनाया तो तुम भी साथ जहन्नम में जाने वाले, क्यों? क्योंकि उनकी अडाली आपके आपके दिल में आ जाएगी कि हाँ ये भी चलता है वो भी चलता है। हिंदुस्तान में देखो मुसलमानों में क्या हो रहा है, कितने कितने मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलके दीन को छोड़ चुके हैं, मतलब बेपरदगी आम है, मिक्स करके आम है, जो भी आता है खा लेते हैं ना, असरात मालूम नहीं पड़ते। आवाज कहने को कहते हैं हम तो मुसलमान हैं लेकिन असरात होते हैं। आप जितना लोग बैठोगे और आपकी आइडियोलॉजी बदल जाएगी, आप देखेंगे जो मुसलमान हिंदू ज्यादा दोस्ती रखता है आप देखेंगे उनके घरों से पर्दा चले गया, या वो मिस जेंडर में जाना शुरू कर दिया, या उनके लिए हलाल हराम का तमीज नहीं रहा, हालांकि कहने को मुसलमान है नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन असरात आ जाते हैं मोमिनीन। इसलिए जरूरी है दोस्त मिलना अच्छा सुलूक अलग बात है, लेकिन दिली दोस्त बनाना या ज्यादा घुलना मिलना उससे अफेक्ट करना खतरनाक है। कहा तुम सब दुश्मन हो जाएंगे क्योंकि तुम मुझे रास्ते से रोकते हो। फिर क्या, फिर उसके बाद इब्राहिम ने बताना शुरू करा उनका परवरदिगार कौन है, पहले बताया ये कैसे है और तुम कैसे हो, फिर इब्राहिम ने बताना शुरू करा परवरदिगार के बारे में, जिसने मुझे पैदा किया वो मेरी हिदायत करता है। कौन है मेरा परवरदिगार, इसने मुझे पैदा करा वो मेरी हिदायत करता है, पैदा करके उसने छोड़ नहीं दिया, पैदा उसने खलक करा पूरे कायनात को और हर एक की हिदायत करिए, खिलकत के तौर पर हिदायत करिए और रूहानी तौर पर हिदायत करिए और अखली तौर पर हिदायत करिए, अल्लाह की हिदायत सब तरीके से, यही नहीं कि एक ही रूहानी हिदायत करता है, हर तरीके की अल्लाह हिदायत करता है। आज जो लैंग्वेज दुनिया में चल रही है, आज जो साइंस की प्रोग्रेस हो रही है, अल्लाह ने जो अकल दी है, ये सब अल्लाह की हिदायत है, अंबिया भेजे किताबें भेजी इंसान अल्लाह की हिदायत है, हर तरीके से अल्लाह हिदायत करता है, अकल सलीम जो इंसान को दिया अल्लाह ने ये अल्लाह की हिदायत है, ये सारी सारी नेमत जो है अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की खलकनी फहुवा यहदीन, हर अल्लाह की हिदायत सूरज को है कि वो चलता रहे, चांद को है कि चलता रहे, सितारों की गर्दिश करते रहे अल्लाह की हिदायत, चिड़िया को भी अल्लाह की हिदायत, जर्रे जर्रे को अल्लाह की हिदायत, उसकी हिदायत नहीं हो अल्लाह ने पैदा करके नहीं छोड़ा हर चीज को, और हर चीज अल्लाह की तस्दीक भी करती है, जो चीज अल्लाह की तस्दीक करना बंद करती है अल्लाह से तबाह कर देता है, जानवर की जब तक की शिकार नहीं होगा जब तक वो अल्लाह की तस्दीक नहीं बंद करते, अगर हमने अल्लाह की तस्दीक बंद करी तो शैतान हमारा शिकार करते हैं फौरन, शैतान आता है दिल के अंदर अल्लाह रहता है शैतान के अंदर, वही जो मुझे खिलाता पिलाता। फिर इब्राहिम ने बेसिक बात करी, कौन है मेरा रब जो मुझे खिलाता पिलाता, हमारा रिस्क अल्लाह देता, कौन किसकी ताकत है आसमान से हमारे लिए पानी बरसा के हमको ताज़ा पानी पिलाए, और रिस्क जो जमीन से उगाता है एक दाने के 70 दाने करता हो, किसान में एक दाना होता है अल्लाह 70 दाने देता है, सब अल्लाह का रिस्क है, अल्लाह उसका शुक्र अदा करना, वल्लज़ी हुवा युत्मईमुनी वो यस्कीन, वो ही मुझे खिलाता है वो ही पिलाता है। वो क्या कहा फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, वो इदा मरिज़्तु फहुवा यश्फीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। मोमिनीन कभी बीमार पड़ना तो कभी नहीं सोचना कि अल्लाह नाराज़ या कुछ सज़ा मिल रही है, अम्बिया भी बीमार हुए हैं, और जब कोई शख्स बीमार पड़ता है उसके गुनाह बख्शाते हैं, लेकिन क्या कहा है इब्राहिम अलैहि सलाम ने, ये नहीं कहा कि मेरा परवरदिगार मुझे बीमार डालता है, बल्कि ये कहा कि जो मुझे शफा देता है, अल्लाह से इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कि सारे नेमतें अल्लाह की तरफ से, इसीलिए कभी जब हमें जाते हैं बीमार की आयदत करने, अगर बीमार हमारे लिए कोई दुआ कर दे तो बीमार की दुआ अल्लाह कबूल करता है, उसका मर्तबा इतना होता है बीमार का, वो इदा मरिज़्तु हो यश्फीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शफा देता है, वल्लज़ी युमीतुनी थुम्मा युहयीन, और वही जो मुझे मौत देगा और फिर जिंदा करेगा। या अल्लाह, कहा कि यही नहीं कि सिर्फ मुझे पैदा करके छोड़ दिया उसने, वो मुझे मौत भी देने वाला, क्या कहा कि वो मुझे मुझे मौत देगा फिर मुझे जिंदा करेगा, सिवा परवरदिगार के मोमिन जी कौन कर सकता है। वल्लदी अतमऊन अय यकफरी खतीअती यौमद्दीन, वो जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि रोज़ जज़ा वो मेरे खताओं को माफ़ करेगा। या करीम, रोज़ जज़ा की खताओं को माफ़ कर सकता सिवा अल्लाह सुब्हान तआला के। और अब आप ये सोचें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं और अल्लाह कुरान बयान कर रहा है कि जो मुझे उम्मीद रखता हूँ कि जो रोज़ जज़ा दिन मेरी खता को माफ़ करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मोमिन क्या खताएं थी, वो तो मासूम थे, फिर भी वो इतने उनमें इतनी इंकसारी थी कि वो फिर भी अल्लाह के सामने कह रहे थे कि मुझे उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार जब मुझसे खता होंगे तो मुझे बख्श देगा। तो इसके अंदर भी अल्लाह ने बड़ी अच्छी बात कही है। मीज़ा ने कहा है कि जो ये औलिया अल्लाह होते हैं उनकी खताएं हमारी खताओं जरा नहीं होते मोमिनीन, जो हमारे नेकियां हैं उनकी खताएं हैं, जो हम सोचते हैं हमने बड़ी नेकी कर दी उनके लिए औलिया अल्लाह के लिए जो अल्लाह के मुकर्रबीन उनके लिए खता होती है। किसे क्या, उनके लिए क्या खता हो गई, अगर वो सो गए या खाना खा रहे हैं या कुछ और दुनिया का काम कर रहे हैं ना, वो भी इबादत है, लेकिन उनके नज़दीक औलिया के अंदर खता है। क्या है खता, कि हमने अल्लाह सुब्हान तआला खाना खाया तो हमारी तवज्जो खाने में चली गई थी, तुझसे अब तवज्जो दूर हो गई थी, या हम पानी पी रहे थे तो हमारी तवज्जो पानी पीने हो गई थी, या हम दुनिया के कुछ और काम कर रहे थे तो तवज्जो तुझसे हट गई थी, ये हमारी खता है, ये औलिया अल्लाह की खता होती है। मोमिन कहाँ हो और कहाँ हम, फिर भी उसको कहते थे खता है क्योंकि उनकी इंकसारी अल्लाह से उनका रबता इतना शदीद था, मोहब्बत इतनी शदीद थी उनकी कि उनको खताएँ दिखती थी। मोमिन हमको भी शर्म करना चाहिए कि हमारी कितनी खताएँ, वल्लज़ी अतमऊ अय यग़फ़िर खतीअती यौमद्दीन, और जब मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो रोज़े जज़ा मेरी खताओं को माफ़ करेगा। मोमिन रोज़े जज़ा की खताएँ बड़ी मुश्किल होगी, इसलिए हमको हमेशा क़यामत के दिन से खौफ करना चाहिए कि हम कैसे खड़े होंगे उस दिन, किस तरह हमारी खताएँ माफ़ होंगी। हमको चाहेंगे रोज़ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की तरफ चले, उनके रास्ते की तरफ चले। वो एक मोमिन थे लेकिन उन्होंने हिम्मत न हारी थी, वो अकेले चले थे, बेटी की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे। आज हमको भी चाहिए, हम हिंदुस्तान में होंगे, पाकिस्तान में, अमेरिका में, कितने कुफ्फार हों, कितने मुनाफिक हों, हमको सफर करना है। हमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम रास्ते पे चलना है, जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया। नौ मुहर्रम में मोमिन, मैं तफसीर पढ़ रहा हूँ, हुसैन अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया, कर्बला के अंदर लाखों दुश्मन थे, लेकिन ये इब्राहिम के वारिस थे, इन्होंने जो हिम्मत करके दिखाया, जो इस रास्ता दिखाया है आज के ज़माने के मोमिन के लिए, कि जब मेरा बेटा आए, जब इमाम ज़मा आए, तो तुम डर जाना इब्राहिम के रास्ते पे। उसके बाद क्या कहा, रब्बी हबली हुक्मन व हिकनी बिस्सालिहीन, ए मेरे रब मुझे इल्म व हिकमत अता फरमा और मुझे सालिहीन के साथ मुल्हक कर दे। क्या कहा, क्या दुआ मांगी, हम भी दुआ मांगना चाहिए, रब्बी हबली हुक्मन व हिकनी बिस्सालिहीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू मुझे हिकमत अता कर और मुझे सालिहीन से मिला दे। हिकमत क्या होती मोमिन, इसमें क्या अरबी में लगा हुक्मन, हुक्म क्या होता, हुक्म ये होता है कि हम इतनी अकल सलीम आए कि हम अपने हमारे अकीदे को पहचाने, हमारे अकीदे क्या हैं लोहित के लिए, हमारे अकीदे क्या हैं रसालत के लिए, हमारे अकीदे क्या हैं इमामत के लिए, ये अकीदे हमारे लिए हुक्म है, वो उस पर उन अकीदों पर चलना, उनको समझ के उनके चलना, इसको कहते हैं हुक्म। तो ये जितना ईमान पुख्ता होगा, जितनी हमारी अकीदा पुख्ता होगा, हमारे अमल भी उतने मजबूत होंगे। तो ये दुआ देंगे, रब्बी हबली हुक्मन व हिकनी बिस्सालिहीन, वो मुझे सालिहीन के साथ मिला। सालिहीन देखें, नेक अमल अलग है और सालिहीन अलग है। नेक अमल ये होते हैं कि हाँ आपने नेक अमल कर लिया, हो सकता है आपने नेक अमल तो करा हो लेकिन आप अभी पाक ना हो या आप में इखलास नहीं हो, लेकिन सालिहीन वो होते हैं जो कि वाकई वो मोमिनीन होते हैं जिनका दिल पाक और ताहिर होता है और अल्लाह के नज़दीक वो मुकर्रबीन में से होते हैं। तो क्या उन्होंने दुआ करी कि अल्लाह ताला तुझे मुकर्रबीन के साथ रख, यानी हमको भी दुआ करना चाहिए कि अल्लाह को हिकमत दे और मुकर्रबीन के साथ रखे, यानी हमारे दिल को पाक करे, ताहिर करे, ताकि हमारे जितने भी अमल हों वो खालिस हों। इसीलिए कहा ना कि पहले हुक्म आए, मतलब हमारे दिल में हुक्म आना, तो वाकई हमारे अंदर अकायद हमारे पुख्ता हों ताकि हमारे अमल खूबसूरत हो जाए। अगर हमारे अकायद कमजोर हो, हम करते हैं अमल, कोई फायदा नहीं। या अगर हमारे सिर्फ अकायद अच्छे हैं लेकिन अमल नहीं, कोई फायदा नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिनके अकायद अच्छे होते हैं, जिनका पुख्ता होते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो अमल अच्छे ना करें, क्योंकि पूरी ताकत अकायद में है, अगर आप में हकुल यकीन है, आईन यकीन की मंजिल पहुँचे तो अमल तो अच्छा इंशाल्लाह होगा। इसलिए ज़रूरी है कुरान पढ़ते रहें, अल्लाह की बातें सुनते रहें, इमाम हुसैन को पे रोते रहें, इमाम हुसैन की कुर्बानी को बावर करते रहें, इंशाल्लाह हमारे अमल भी अच्छे होंगे। फिर क्या आगे दुआ करी, अली निशान सिद्दीक फिल आखिरीन, और तू मेरे लिए आने वाली नस्लों में सच्ची ज़बान करार दे, तू आने वाली नस्लों में सच्ची ज़बान करार दे। मतलब क्या कि मेरी जो दुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जो मेरे आने वाली मेरी ज़रूरियत है वो तो ही की ज़रूरियत हो तो है। तो बासा कहना है, मासूम ने कहना है कि इससे मुराद वाला मुतकियान है, उनकी औलाद वाला मुतकियान है, जिनकी ज़बान सच्ची ज़बान थी, सारे के सारे आइमा उसी सच्ची ज़बान से लेके आए, सच्ची ज़बान लेके आए। ये दुआ थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, उसमें सरकार खत्मी मर्तबा और पूरे आले मोहम्मद सब सच्ची ज़बान में मौजूद है। हमको भी अगर मुमिन, अगर हम नेक रहे, अगर हम नेक रहे तो इंशाल्लाह हमारी औलाद भी नेक होगी। अल्लाह ताला ने बार बार इशारा करा इस तरह कि अगर आप नेक रहोगे, कुरान में इस पर इशारा है, अभी जो वक्त नहीं है उसके बारे में बयान करूँ, अगर आप नेक रहे तो इंशाल्लाह आपकी औलाद में भी अल्लाह नेकी डालेगा। वह अली भी वरसत जन्नत नाई, और क्या दुआ करने के बाद उन्होंने, और तू मुझे नियामतों से भरी जन्नतों के वारिसों में शामिल कर दे। ये दुआ थी उनकी के, और जो हर मोमिन को दुआ करना चाहिए जन्नत के नियामतों का वारिस बना। और इंशाल्लाह अगर हम दुआ करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि मस्जिद इब्राहिम के रास्ते पर चले, सीरत इब्राहिम पर चले, सीरत इब्राहिम, सीरत मोहम्मदी, सीरत मोहम्मदी, सीरत हुसैनी, ये सारी एक सुन्नत है। वही सीरत इमाम जमा की सीरत है। वक्फली अभी इन्हो काना मेरा ज़ालिम, और तू मेरे बाप को बख्श दे बेशक वो गुमराहों में से था। मतलब आज़म, आज़म का हकी बाप मतलब चचा था, कहा कि उसको बख्श दे क्योंकि वो गुमराहों में से। लेकिन बाद में कुरान में आयतें आई कि ये जो उन्होंने दुआ करी थी, उनका वादा था अपने चचा से कि मैं तुम्हारे खुदा से दुआ मांगूंगा, लेकिन बाद में पुरानी आयत आई जिसमें कहा कि अल्लाह ताला फरमाता कि बाद में जब इब्राहिम मालूम पड़ा कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो फिर इब्राहिम ने उससे बरात करी, उससे बरात करी। लेकिन तो एक तो इस तरीक़े से तफसील है उसकी, मासूम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मोमिन बेटा बाप के साथ आएगा और बाप उसका काफिर होगा, और मोमिन बेटा बाप का हाथ पकड़ेगा और अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह सुब्हान अल्लाह ये मेरा बाप था तो उसको जन्नत में दाखिल कर दे। तो आवाज़ आई ये तुम्हारा बाप काफिर था इसलिए जन्नत में न जाएगा, तो बेटा जिद करने लगेगा। तो अल्लाह ताला उस बाप की सूरत को एक भेड़ी की सूरत में बदल देगा, और जब देखेगा कि ये तो मेरा बाप नहीं भेड़िया, तो फिर उससे बरात करेगा कि बाप ये मेरा बाप नहीं भेड़िया। तो रूहा तो मोमिनी जो चीज़ हकीकत में दिखती है वो जाहिर में उसका बात ही कुछ और होता है। हो सकता है आपका बाप हो सकता है खूबसूरत दिखता रहा हो, लेकिन अगर वो काफी है तो वो हकीकत में वो अंदर से भेड़िया है, वो अंदर से भेड़िया है। कुरान में आते हैं कि मोमिन तुम में से तुम्हारी बात होता है तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन है। तो ये है कि पैगंबरान की बीवी बीवियाँ भी जहन्नम चली गई, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर था। तो हर घर के अंदर हर आदमी मोमिन जरूरी नहीं है, लेकिन हमको चाहिए कि हम कोशिश करें अल्लाह इज़्ज़त से उम्मीद रखें, और हर आदमी हमारी पूरी फैमिली को चाहिए कुरान लगातार पढ़ें, रोज पढ़ें, तफक्कुर करें, इंशाल्लाह कुफ्र और निफाक दूर होगा इंशाल्लाह। फिर क्या आगे दुआ करी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, वला तुख्ज़नी यौमा युबअसून, और जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे तो मुझे रुसवा ना करना। मोमिन वो दिन बड़ा सख्त होगा जब कब्रों से उठाए जाएंगे सबको, सबसे सख्त दिन हमारे लिए क़यामत का दिन है मोमिन, एक दिन तो सख्त होगा जब हमारी मौत आएगी, हम बरज़ख़ जाएंगे, अल्लाह ताला से दुआ है हम उस दिन बख्शा जाए। और एक दूसरा सख्त दिन है जब क़यामत आएगी और हम उठाए जाएंगे, बड़ा सख्त दिन है, हमको नहीं मालूम हमारे साथ क्या होने वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं, खुद दुआ कर रहे हैं, तो हम किस खेत की मूली है। वला तुख्ज़नी यौमा युबअसून, जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे तो मुझे रुसवा न करना, या करिए। फिर क्या फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यौमा ला यरफ़ऊ मालूम वला बनून, जिस रोज न माल सूदमंद होगा ना ओला, न तो माल फायदा देगी न ओला, ये कुछ फायदा नहीं देने वाले हैं। जब कुरान में तो बार बार ये कहा है कि तुम्हारी माल और ओला तुम्हारी आजमाइश है, फितना है, या करीम हमारी हिदायत कर। फिर क्या कहा, इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, सिवा उसके जो अल्लाह की बारगाह में कल्बी सलीम के साथ आए। कल्ब सलीम उसने क्या है, सिर्फ वो कामयाब होने वाला है, मतलब कल्ब सलीम लेके मैं पाक दिल लेके आया, पाक दिल लेके आया। इसके अंदर आई माई का भी हदीस है कि पाक दिल से क्या मुराद है, पाक दिल से ये वो मुराद है जिसके अंदर मासूमी फरमाते हैं, हम सारे फरमाते हैं कि पाक दिल से मुराद ये कि जिस दिल में सिवा अल्लाह के कोई और मौजूद ना हो, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत हो, उसके साथ कोई शक ना हो, कोई 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 शक ना हो, शक भी निफाक है ना, शक हो। और फिर क्या फरमाया मौलाना सारे अल्लाह साहब ने, जो बड़ा मुश्किल है कि कौन सा होता है पाक, कहा कि वो हार्ट जिसके अंदर दुनियाई मोहब्बत ना हो। या करीम, हम सबके दिल में कुछ ना दुनियाई मोहब्बत है, हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं दुनिया की मोहब्बत की, जो भी दुनिया में करे करे जिम्मेदारियां हैं लेकिन उस पर दिल ना लगा, फराइज़ हैं लेकिन उसे दिल ना लगाए, दिल सिर्फ अल्लाह से लगाए, कर रहे हैं हर चीज लेकिन अल्लाह के लिए कर रहे हैं, दिल अल्लाह से लगाए, जिम्मेदारी तो कुछ चीजें कर रहे हैं लेकिन बच्चों, जैसे कि बीबी जैनब ने कहा था मौला मुत्तखियान से, आप मुझसे क्यों मोहब्बत करते हैं, तो मौला मुत्तखियान ने जवाब था, चूंकि अल्लाह ने मुझे कहा इसलिए मैं तुमसे बेटा मोहब्बत करता हूँ, ये एटीट्यूड हमारा घर में होना चाहिए, हर चीज हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, दिल अल्लाह से लगे, माल से मोहब्बत ना करें, माल कमाए लेकिन दिल अल्लाह में लगाए, माल को अल्लाह की राह में खर्च करें, औलाद से मोहब्बत करें लेकिन दिल ना लगाए, दिल अल्लाह में लगाए, औलाद को ट्रेन करें अल्लाह के लिए, कुर्बान का मौका आए, जहूर का मौका आए तो औलाद को आप साथ में लेके जाए अपनी 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 औलाद को कुर्बानी के लिए, जब बोला आए इंशाल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये करा था, मोमिन अपनी औलाद को लेके गए थे और अल्लाह के सामने इस्माइल अलैहिस्सलाम को हाजिर कर दिया कि मैं अपनी औलाद की कुर्बानी को तैयार हूँ। मोमिनी ये दुआ तो आपने सुन ली इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, आज नौ मुहर्रम है, आज नौ मुहर्रम में तफसीर कुरान पढ़ रहा हूँ मोमिनी, आज नौ मुहर्रम में मौला हुसैन ने शहादत के पहले आखिरी हज जब करने गए थे, हालांकि मौलाना को हज की इजाजत ना थी, शहीद हो जाते वहीं, तो दुआ अरफा पढ़ी, एक दुआ ये है मोमिनी, एक दुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है जो कि हम दुआ अरफा पढ़ते हैं, अल्लाह इमाम हुसैन ने दुआ अरफा पढ़ के बता दिया कि उनका मुकाम क्या है, वो उनका मुकाम आला तरीन मुकाम है, जो बड़े बड़े जो के सोचना नहीं सोच ना सकते हैं, सरदार जाना जन्नत में जब अल्लाह का बयान करा, अल्लाह की नेमत को बयान करा, तो हम हैरान परेशान हो जाते हैं, क्या मारफत थी मौला की हुसैन अलैहिस्सलाम की, किस तरीके से शहादत के पहले दुआ अरफा पढ़ के चले गए, देखो दादा इब्राहिम आए दुआ आपने पढ़ी थी, ये दुआ मैंने पढ़ी है कि मैं आप बता दो अल्लाह कौन है, वो दादा इब्राहिम मैं आपके रस्ते में चला, आप इस्माइल को लेकर गए थे, आज मैं मेरे पूरे खानदान को लेकर करबला जा रहा हूँ, वो दादा इब्राहिम आपकी कुर्बानी तुम्हारा भेजा, लेकिन मेरे कुर्बानी एक अजीब कुर्बानी है, एक अजीब कुर्बानी है कि मेरी कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल करा इससे इससे कि मेरे भाई की कुर्बानी कबूल कर ली, मेरे बच्चों की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल करी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फख्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, सलाम हो हुसैन पे, सलाम हो अली बिन हुसैन पे, सलाम हो औलाद हुसैन पे, सलाम हो सहाबे हुसैन पे, अल्लाह ने तमाम कबूल कर ली।